থেকে দিন সিদ্ধান্ত দর্শনের জন্ম বর্ধন অস্তিত্ব অপেক্ষা মৃত্যু স্বর্গিকা তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং বর্তমানে বলছেন যে বর্তমানে যে মায়াবাদ সেটি তীব্রে তাৎনা এবং আদিত্য ভেদাভেদ গ্রন্থে তিনি ইত্যুক্ত সম্প্রদায় ব্রহ্মমন্ত্র গৌরীয় সম্প্রদায়ের বিকাশটি তিনি স্থাপন করেছেন কিছু স্বাভাবিক সম্প্রদায়ের যে পুরুষ মতবাদ সেই সমস্ত মতবাদকে নির্মূল করে তিনি সুস্থ বিচারভাবে তিনি স্থাপন করেছেন প্রেম প্রচার কার্যটি নিদর্শন স্বরূপে ভক্তি কৃষ্ণ মহারাজের শ্রী রাধা বিনোদ রাধা বিনোদীকে হারে দীর্ঘায় সেবা প্রকাশ শ্রী রাধা বিনোদকে হারে সেবাশে এমনকি অনেক গরিমন্ত্রের বৈষ্ণব ক্ষমতা সন্ধান সন্ধান হন তারা এইরূপ প্রকাশ করে নতুন কিছু কথনের ভাই এর মধ্যে তারা ভক্তি প্রজ্ঞান কৃষ্ণ মহারাজের রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ জাহানি সেবা প্রকাশ থেকে তারা নতুন কিছু করলে নবসৃষ্টি করে তারা পরিহার করে কিন্তু এই রূপ বিচার নয় তাহলে ছিল পুরীতে পুরী পুরী পুরীধাম গোটা করে আছে যে কৃষ্ণ মন্না রাধা রান্না সেটি তো অত্যন্ত প্রাচীন বিগ্রহ সেইটি কি নতুন কিছু বলে তারা কল্পনা করেন এই বিচারটিকে এই ভ্রান্ত ধারণাকে নিরাশ করবার জন্য তিনি রাধা বিনোদ জ্ঞানী তত্ত্বপ্রথম এটি তিনি রচনা করেছেন রাধা কিন্ত নিবেশন এত কান্তি বিরোধিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণাম মন্দে রাধা নিহিত বিগ্রহ রাধারানী সর্বদার যে বিনোদের মগ্ন থাকেন সেই রাধা বিনোদে বিহার করতে গিয়ে যিনি প্রিয় কান্তি হারিয়েছেন তিনি সেই রাধা বিনোদ রাধা মহাবের প্রতি সুবলিত শ্রীমন মহাপ্রভু যে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু সেই বিচারটিকে তিনি স্থাপন করতে তিনি রাধা বিনোদ বিহারীকে তিনি প্রকাশ করেছেন বস্তুত রাধা বিনোদ মহাপ্রভু যে মূলত তিনি বিনাগর ভারতী বিজয় বিগ্রহ সেই জিনিসটি স্থাপন করতে তিনি বিনোদ বিহারীকে প্রবঞ্চিত করেছেন এই এই এইটি হচ্ছে ব্যাপার এবং সেখানে তিনি অসংখ্যের দাবের কথা তিনি বলছেন শেষ করতে এবং সম্ভবকে দায়িত্ব রেখে সুস্থভাবে বিপ্লবের সর্বত্র বেদরিতা দিবস হয় তিনি নামি তোমার সপ্তম ঘেরা আর তোমার দিনকে পাও সত্যি সত্যি মানবেশন যুগপ বর্ষতে চলা অর্থাৎ এই অবেদত্বকে বজায় রেখে যুগঙ্কিতরের প্রশক্তি শক্তি মানের ভেদত্ব আবার ভেদত্বকে বজায় রেখে তাদের অবেদত্ব এই বিচারটিকে তিনি স্পষ্ট রূপে তিনি প্রদান করতে গিয়ে তিনি রাধা কৃষ্ণকে হারিয়ে সেবা প্রকাশটি করেছেন অনেকে এইরূপ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের তো মৃত্যু হ্যাঁ বলেন সেখানে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরবর্ণ প্রাপ্তি তো সাময়িক সুতরাং এই প্রকাশটি নিতান্ত অসম্ভব কিন্তু এই বিচারটি তাহলে শ্রী জগন্নাথের জীবন গণিত বিধিমতে তারা কি সময় করে কল্পনা করে অথবা পুরীর কৃষ্ণ মনে রাধা তাকে তারা কি দৃষ্টিতে দেখেন এই বিচার রাধা দামোদরে যে দাম বন্ধন বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে তাদের আধ্যাত্মিক বিচার করে কিরূপ কল্পনা করে যদি রাধা রামদারকে বিচার নিতে আমরা গ্রহণ করি তবে রাধা গোবিন্দ রাধা গোপীনাথ রাধা মদন মোহন তারা আসছেন কিনা এইরূপ বিচার দ্বারা গৌরী উপলব্ধি সম্ভব নয় বলা চলে সন্ন্যন্দ করে সন্ন্যন্দ বিদ্যুৎ করে যে আত্ম যে মদন মোহন গোবিন্দ গোপীনাথ তাদের অভিজ্ঞতার সমস্ত এই তিনতত্ত্বের অভিব্যক্তি রান্ধা রমণে প্রকাশ করেছে বলে গরীয় মানে অভিগম। সেই যে রান্ধা রমণের চরম অবস্থায় যেমন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিষয় বিভক্ত থেকে আশ্রয় বিভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রতিগুণের শ্রেষ্ঠ, সেই আশ্রয় বিভক্তকে তিনি আস্বাদন বলে যখন এই ভাবাবিত হলেন, সেই অবস্থাতে তার যে বর্ণকান্তিক যে পরিবর্তন সেইটি হচ্ছে সেই রাধা বিভক্তি। অর্থাৎ রাধা এই রাধা পর্যন্ত রাধা কবিনা রাধা শ্যামচন্দ্র যত বিগ্রহ গণ আছেন তাদের চরম পর্যায়ে সেই রাধা বিভক্তি হয়, এটা কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই রাধা বিভক্তি বিহারী শ্রী কৃষ্ণ পীঠ এবং শ্রী গৌরী এই দুই পীঠের মিত্র যোগসূত্র নতুবা কিভাবে সেই কৃষ্ণপীঠ এবং গৌরীপীঠের স্বামী স্থান বৃদ্ধি করি। আজ শ্রী রাধা এবং বিহারী মধ্যস্থলে যিনি নিত্য বিনোদ মঞ্জুরী রূপে অবস্থিত সেই বিনোদ মঞ্জুরী এই দিনে শিল ভক্তি শিল বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী না পরবর্তীতে প্রজ্ঞান ব্রহ্ম প্রজ্ঞান করতে যে ভক্তি বিভক্ত করা হচ্ছে সেই প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান সেই ভক্তির সামঞ্জস্যটি তিনি স্থাপন করার জন্য ভক্তি প্রজ্ঞান যথনযুক্ত মহারাজ রূপে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আজ তার আবির্ভাব সেই তিথি উপলক্ষে তার শ্রী চরণে এবং তার অনুসরণ কার ভক্তবৃন্দের চরণে আমার অনেক অনেক করে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের চরণে আমার এই নিবেদন, আপনারা প্রার্থনা আপনার এই আগুন ধরে প্রার্থনা করুন যাতে প্রভুপাদের বিচার ছাড়া প্রভুপাদ যে কারণে তিনি সেই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই সেই
কৃষ্ণায় কৃষ্ণতেই কন্যানাম গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ সদায় অতিমত্তচরিত্রায় নারায়ণং নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসি পূজয়ামি। পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা পবিত্র শ্রীমন ভক্তি প্রজ্ঞানকে সর্বস্বামী ভায়া আবির্ভাব তিথিকে উপলক্ষ্য নিয়ে তিন দিন কাল বৃন্দাবন অপরাধিক জীবন কে সম্বন্ধে উপদেশ কে সম্বন্ধে হম লোক শাম সম্বন্ধ নিয়ে কিছু বিচার করেন। আপ লোক জানতে হ্যাঁ কি উনকা আবির্ভাব মাঘ
শুক্লা
শুক্লা তৃতীয় তৃতীয় তিথি তো বঙ্গাল माता पिता बड़े धार्मिक थे, उनके पूर्वज भी वैष्णव थे, माता पिता पर धार्मिक थे। बचपन का जीवन भी उसी प्रकार से उनका बीता, कुछ अलौकिक उनके जीवन में सब घटनाएं होती थी। परम सुंदर, बड़े साहसी, बलवान ये थे बचपन से ही, इसलिए इनका नाम भीम रख दिया। बलवान मोटे साजे थे और अत्यंत सुंदर थे, इसलिए ज्योत्सना जोना और जनार्दन भी नाम, जनार्दन भी नाम,
जनार्दन
भी नाम। और प्रभुपाद जी ने इनको, इनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने दिया विचार करके। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी, हम लोगों ने वृंदावन में ये बताया, होनहार विवान के वो सची कने मान। पहले से ही ये पता चलता है कि ये कैसे व्यक्ति, बचपन में ये लोग चार भाई थे, ये दूसरे नंबर के, पहले नंबर के थे और लौनी महाराज जी, इनका संन्यास का नाम हुआ, वो बाग बाजार गौरी मठ के आचार्य थे। आचार्य थे जैसे गुरु महाराज जी समिति, वेदांत समिति का आचार्य, वैसे ही आचार्य थे। बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी बंगला इत्यादि के भी बहुत सुंदर भाषण भी देते थे, वक्तृता देते थे, भागवत की व्याख्या खूब सुंदर करते थे। विद्वत पुरुषों ने उनका नाम था। और दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर पुलिन बिहारी ब्रह्म, पुलिन बिहारी जी थे चतुर्थ, और एक भाई थे वो स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लीडर, चारों अद्भुत, किंतु चारों में यही सबसे अधिक विचारक थे और माता जी के ऊपर में ये हुए, इसलिए माता की इन पर बहुत स्नेह करती। जमींदारी का भाग ये छोटे होने पर भी इन्हीं पर दिया जाता, माता जी पर विश्वास करती और इनका विशेष ध्यान रखती। पिताजी जहाँ जाते कोई धर्म सभा होती, गीता का भागवत का पाठ होता है, तो ये जरूर जीत करते कि मैं चलूंगा। इसलिए पिताजी अब उनकी अंगुली पकड़ करके दूर होता अपने कंधे पर बैठा करके और ले जाते और इनको वापस सुनाते। बचपन से धर्म की प्रवृत्ति, बड़ी दया थी, दयालुता के लिए मैंने बतलाया, कल वहां बतलाया ये कैसे दयालु थी। ये माँ शाम को रात में लड़कियां लेकर के खड़ी थी, तुम कहाँ गया था बतलाओ, रात हो गई, मैं नहीं चाहता कि तुम 6 बजे के बाद में तुम कहीं बाहर जाओ, शासन करती थी। तो एक दिन उनको पकड़ लिया, वो 10 बजे रात में लौटे, अरे बतलाओ तुम कहाँ गया, वो बतला नहीं गए थे, भैया और बिगड़ गई, जरूर कुछ गड़बड़ी, कहाँ तू था, हमारे लड़कों के साथ में घूमता है या क्या करता है। तो उन्होंने मैया को बतलाया पीछे से, भैया मैं गया था, देर हो गई, एक बुढ़िया है यहाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है, बीमार पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, तुमने हमको जो पैसे जोड़ने के लिए दिए थे खाने के लिए मैंने खाया नहीं, और कुछ इकट्ठा किया समाज से, जिसको कोई जान न सके और रात में इसलिए कि कोई देखे नहीं ये काम कर रहा है, क्योंकि वो लज्जा करेगी, अच्छे घर की लड़की वो है और वो गरीब हो गई है, इसलिए उसको भी निंदा का डर है ना, इसलिए मैं रात में उसके पास में जा करके उसको खाने के लिए व्यवस्था किया, घर घर से कुछ लेकर के दिया और उसकी दवा की व्यवस्था की, डॉक्टर को दिखलाया और उसको किसी प्रकार से रख करके सामने आया। बस मैया के आंखों से आंसू निकलने लगा और कही अब से तुमको मैं कुछ दिन नहीं जाऊंगी, उन पर विश्वास हो गया। तो ऐसे वो दयालु पिताजी जहां सभा होती वहीं पर इनको ले जाते और यही सब सुनते। यहाँ तक के स्कूल में उस समय में बीए क्लास में चैतन्य चरितामृत ये पाठ्य पुस्तक थी। तो एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर लोग चैतन्य चरितामृत के कुछ प्यारों को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ गलत बतला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे अर्थ नहीं होगा, अपने प्रोफेसरों को उन्होंने समझा करके रूपा के पास में आए थे, थोड़ा सा संपर्क हो गया था, 16 वर्ष की स्थिति में ही रूपा जी से हरिनाम दीक्षा लिया, हरिनाम और 2-1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ कौन सा तत्व, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, बदंति तत्व विदत तत्व इति का बंगला प्यार में जो उन्होंने अर्थ किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान तत्व है और जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। अद्वैत ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं और भेदाभेद प्रकार क्या होता है, तटस्थ शक्ति क्या होती है, बिना शुरू से इन चीजों को समझ करके किसी को इसमें तनिक भी प्रवेश नहीं हो सकता। गुरु की बहुत दिन सेवा करे, वैष्णव की सेवा करे तो ये सब समझ में आएगा, अब बिना इन सब समझे तत्व में प्रतिष्ठा नहीं होगी, भजन भी आरंभ नहीं होगा। तो उन्होंने गुरु जी जब उनको नहीं आया तो उन्होंने जब उन्होंने उल्टा सीधा व्याख्या किया तो उन्होंने पार कर दिया, पूछा आप पाठ काट करके मत चलिए, अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं बतलाइए, भेदाभेद क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है और कृष्ण अद्वैत ज्ञान कैसे होंगे, तो तुम बतलाओ। तो विशेष करके इसका विचार उन्होंने दिया है अचिंत भेदाभेद ग्रंथ में, सुंदरानंद विद्या विनोद और ये हरिदास दास, राधा गोविंदनाथ और अनंत वासुदेव जी, ये 4 इलेक्ट हुए जैन और धर्मराज के गुरु जी कहते थे ये गुंडे हैं, त्रिशूल का त्रिशूल तो ही है गुंडे, ये छिपा करके कुछ उठकर तुम चोर नहीं हो, नहीं को हटा दिया तुम क्या बाकी हो गया,
चोर हो,
तो शास्त्र में लिखा तुम चोर हो। ऐसे ही शास्त्रों की बातों को छिपा करके उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ सजा किया। सुंदरानंद विद्या विनोद जी के बहुत विद्वान आदमी, बहुत से पुस्तकों को लिखा, गुरु जी ने कहा जब तक वो प्रभुपाद जी के आश्रय में थे तब तक तो ठीक लिखा उन्होंने, और जब प्रभुपाद जी का अंकुश हट गया शिष्टाचारी हो गए और गुरु जी को भी छोड़ करके बाबा जी सहजिया बाबा जी से हो गए, तब निरंकुश होकर के उन्होंने अंत संत गड़बड़ सब लिखा। वेदांत हमारे भागवत में लिखा है वदन्ति तत्त्वं विदत्तं यज्ज्ञानम् अद्वयम्, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व और अद्वैत बात एक नहीं है। सुंदरानंद विद्या विनोद ने यह कहा कि कृष्ण भागवत जो है अद्वैत ज्ञान पर तत्व को स्वीकार करती है, और उसी का प्रतिपादन करती है। अद्वैत ज्ञान माना था न द्वय इति अद्वय, क्या दो अर्थात अद्वैत है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु जी का संप्रदाय अद्वैतवादियों के निकट में है। तुम लोग समझो नहीं तो तुम लोग पढ़ने से भी नहीं समझेगा, लिखो पीछे समझो अने तो भरंडा भागेगा। तो उन्होंने ये बतलाया न द्वैत इति अद्वैत, न द्वय इति, इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग अद्वैत ज्ञान को भागवत का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। दो नहीं आता तो एक है, कृष्ण एक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वेन्द्रपुरी पर जो कि अद्वैतवादी सन्यासी थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, और उनके जितने परिकर थे उन लोगों सबने अद्वैत मत नहीं लिया। महाप्रभु जी ने स्वयं अद्वैत मत के केशव भारती से संन्यास लिया। यहाँ तक कि इस माधवेन्द्रपुरी भक्त होने पर भी उन्होंने संन्यास लिया अद्वैतवादी से। यहाँ तक कि मध्वाचार्य ने भी अद्वैत साधु से संन्यास लिया। अद्वैताचार्य इत्यादि सब अद्वैत अद्वैत संप्रदाय के ये सब निकट में है, इसलिए हम लोग अद्वैत ज्ञान का अद्वैत ज्ञान पर गुरु जी ने कहा कि ये पाप अंदर है। ऊपर से जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं समझेंगे, तत्व के भीतर नहीं प्रवेश करेंगे, वो तो कहेंगे सचमुच से तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम अत्यंत भेदाभेदवादी हैं, ये किसका मत, भागवत का मत नहीं है, तो महाप्रभु जी ने इसको क्यों स्वीकार किया। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय अत्यंत भेदाभेद है, यह समझो, अद्वैत ज्ञान नहीं है। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य यहां न द्वितीय, अद्वितीय का तात्पर्य उनके समान कोई नहीं है, ये अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य असमोध और सम ऊर्ध असमोध, ये नाम है अद्वैत ज्ञान का। महाप्रभु जी ने नहीं कहा कि हम अद्वैतवादी हैं, तो अचिंत भेदाभेद बात किसका है, हमारे जी गोस्वामी का विचार क्या है, अचिंत भेदाभेद है ना अद्वैत ज्ञान है। तो फिर अचिंत भेदाभेद यदि अद्वैत ज्ञान ही भागवत का ये तात्पर्य है तो ये कहां से आई लोगों ने, तो अशास्त्रीय विचार का इन्होंने अनुमोदन किया है या विचार किया अचिंत भेद आ गए। इसलिए सुनरा नाम का ऊपर से नीचे कहना तक और वो जितने हैं जिनका नाम अभी तक लिया सात विरोधी है महाप्रभु अचिंत भेद आ गए, क्योंकि श्रीमद भागवत में अचिंत भेदाभेद का बात लिखा है और गीता में भी अचिंत भेदाभेद, समस्त शास्त्रों में अचिंत भेदाभेद। वेद का यह अंश व्यवहारिक है और यह पारमार्थिक है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जैसे तुम हो मैं हूं वह, ये तो शास्त्रों में सर्वत्र है। तत्त्वम् अस्ति, ये तम शब्द आया कहां से, यदि है ही नहीं है एक ही तत्व है तो ये वेद तो सत्य है ना, वेद को तो सभी से ये कहां से तम शब्द कहां से, तम कहां से आया और किसको कह रहा है, सब को, तो ये कहां से आया। इसलिए अद्वैत बात ही नहीं है कोई, अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि एक ही है, अद्वैत का तात्पर्य असमोध अलौकिक असमोध सहस्त्र शक्ति युक्त शक्ति युक्त पराशक्ति विविध नित्यो
नित्या नाम है यहाँ पर नित्य नित्यों का भी परम नित्य है। बहुत से नित्य को स्वीकार किया और तब उनमें भी परम तत्व को स्वीकार किया। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम और परम पुरुषोत्तम ये सब ऐसा क्यों वर्णन किया और बतलाया ये उन सब में मैं ही जो कोई मुझे जानेगा माँ में एव प्रपद्यन्ते ताम माया नेतम सर्वधर्मान प्रति माँ में एकम ऐसे कहते हैं माँ में एकम किसको कह रहे हैं झूठे को जो झूठे लोग वहां पर थे अर्जुन झूठा है इसलिए नहीं बहुतों में जो सबसे सर्वोत्तम है उसको अद्वितीय अथवा अद्वैज्ञान जिसमें सभी हैं
बहुत।
इसलिए भागवत का तात्पर्य अचिंत भेदावेद है। गीता का तात्पर्य वेदों का वेदांत का उपनिषद सबका तात्पर्य है क्या क्योंकि वेद के समस्त पक्षों की पुष्टि इससे होती है। वेद में दो तरह के विचार हैं भगवान की शक्ति भगवान से भगवान की शक्ति और शक्ति से परिणत जो वस्तुएं हैं जीव और जगत का भगवान के साथ में भेद भी है यह अचिंत भेद। वेद में बतलाया जैसे बतलाया नित्यो नित्यान गौ सपर्णा साइजो सखाया एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं एक पक्षी जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा का साक्षी है वो सब देखता है क्या ये कर रहा है और जीव फल चखता है क्या फल अपने अच्छे गुरु पर उनका फल चखता है प्रभु चखता नहीं है वो क्या करता है साक्षी के रूप में देखता है कि ये क्या कर रहा है। तो ये दोनों दो हुए ऐसे हजारों सब मिले हैं और ये भी लिखा है सर्वानुकालम तन ब्रह्मा सभी ब्रह्म ऐसा भी लिखा ऐसे बहुत से हजारों सब मिलेंगे एको
एको हम
बहुत श्याम ऐसा भी लिखा गया सऐक्षत उन्होंने इच्छा की और ये जगत और जीव हुआ। इसलिए अद्वैत नहीं है ये दोनों को मिलाकर के वेद के सभी अंश ही सत्य है उसमें कोई भी झूठ और व्यावहारिक नहीं है सभी परमार्थिक सत्य किंतु उनमें तारतम्य है। जैसे हम लोगों में कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बुद्धि में कोई अकल में कोई कुछ में कोई शारीरिक बल में सब में तारतम्य है उसी प्रकार से तारतम्य वहां पर स्वीकार सभी एक अद्वैय खिचड़ी निर्विशेष निराकार ये अद्वैय ज्ञान का तात्पर्य उसी के अंदर में उनकी शक्ति और शक्ति परिणत समस्त जीव और जगत सबके साथ में प्रभु का कृष्ण का भेद भी है किंतु कैसा है अचिंत मानव वेधा के द्वारा अपनी शक्ति से नहीं होगा वेद बुद्धि कम में है। वेद बुद्धि माने गुरु परंपरा से जो विचार आ रहे हैं उसका अनुसरण करने पर हम देख सकेंगे ये ऐसा और कोई स्वतंत्र सोचे चिंता माने एकदम कुछ चिंता नहीं किया जाता ऐसा। इसलिए ये सब विचारों को कौन सुनेगा कौन बतलाएगा स्कूल कॉलेज में ये होगा इसलिए गुरु महाराज जब कोई ऐसे सुंदर स्पष्ट करके जब उनको समझाने लगे वो देखते रहेंगे इनके यहाँ हमको क्या पढ़ना है बस राजे भी जानते करके प्रभु पाद के चरण कमल विद्या वही विद्या किसको कहते हैं भागवत अवधि अथवा साविद्या कर्मति विद्या जिसके द्वारा भगवान के चरण मति है इनसे गुरु जी से हम अपना पढ़ेंगे इनसे क्या हम पढ़ेंगे ये तो हमारे छात्र भी होने लायक है इसलिए छोड़ करके चले जाए। जब वहां आए प्रभुपाद जी ने कहा जिसे वो आए थे अपनी पीसी माँ के साथ हम लोग में से शायद देखा होगा तुम ही देखे थे और कोई यदि होगा पुराना आदमी तो देखा
ये भी देखे हमें कि याद नहीं, फिर सही देखे।
बड़ी विदेशी महिला थी, बहुत विदेशी महिला, साथ साथ में कविता बनाती थी। गुरु जी परिक्रमा जा रहे हैं और उनका लिखना हो चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर कैसे दर्शन किया कराया था। तो वही छोटे से बच्चे 16 वर्ष के बच्चे को ले आई, वही इनको हरि कथा पहले सुनाती थी। अंत तक गुरु महाराज जी ने बड़ी किए रखते थे, उनकी सेवा कर रहे अंत तक हम लोग सब लोग। तो वो इनको लेकर के प्रभुपाद जी के आई या प्रभुपाद के चरण में इनको समर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय कहते थे कि हम अभी एक भी मठ नहीं था केवल मायापुर में। उन्होंने कहा कि 9 दिन में 9 हम मठ करेंगे और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह में हम प्रचार केंद्र करेंगे और वहीं से सब जगह पृथ्वी भर में प्रचार करेंगे भगवान का, कीर्तन का, ना चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का और कीर्तन का प्रचार करेंगे हम विश्व भर में। इन्होंने कभी भी मठ तट और जमीन खरीद करके नहीं बनाया। जिस प्रकार से हो किराए में रखा, प्रभुपाद जब तक थे अधिकांश किराए में ही थे, क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वहीं से प्रचार होगा। तो ऐसी जब तक भावना थी, निष्पक्ष भाव से सब लोग रह करके खुद प्रचार करते। गुरु महाराज जी क्या करते थे, जब मठ में आए पढ़े लिखे लड़के, जमींदार घर के लड़के, परम कोमल शरीर इनका, और वो बिना जूता बिना किसी चीज के बिना छाता सवेरे भोर में अन्न चावल माने उसी को गीला बना दिया जाता भारी अन्न और उसमें नमक देकर के खा लिया। कभी उसमें साग भी उसमें मिला दिया, कभी कुछ और दे देते, इसी तरह से कभी आलू उसमें दे देते और सवेरे खा करके निकल जाते बक्सा लेकर के लकड़ी का, और कुंजी रहती प्रभुपाद जी के पास सबकी। और प्रभुपाद ने कहा 2 पैसे 4 पैसे एक आना से अधिक मत लेना किसी से, बस 1 पैसा 2 पैसा जो डालेगा बस वैसे। और ऐसे नहीं, महाप्रभु जी के कथा सुनाना जी, कहां से तुम लोग आए हो, मायापुर से आए हो या कहां से गौरी मठ से आए, किस लिए हम लोग ले जा रहे हैं, एक बात कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम का क्या महात्मा है, भक्ति किसको कहते हैं, इसलिए लोगों से संपर्क होगा और प्रचार होगा और मान अभिमान दूर होगा। तो गुरु जी जाते थे, एक दिन प्रभुपाद अपने प्यारी लाल ड्राइवर माने ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद का ड्राइविंग करते, तो वो दोपहर में कहीं काम से जा रहे थे कलकत्ते में गड़ेमा जहाँ पर की किला है अंग्रेजों का द्वारा स्थापित किया हुआ बहुत बड़ा भारी महल था, उसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर में 12 बजे दोपहर में और जेठ के महीने में एक पेड़ की जड़ पर वो बक्सा रख करके उसी के ऊपर में सीट दे करके और ऐसे ही विश्राम कर रहे थे गुरु जी। 16-17 वर्ष के बच्चे 18 वर्ष। प्रभुपाद जी ने देखा, प्यारीलाल ने अरे देखो विनोद 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 सो रहा। प्रभुपाद जी ने देखा चले गए के फिर शाम को आकर के वही देखकर के इनकी विशेष कृपा हुई। जैसे यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, कृपा कब होती है, किसी की एकांतिक कथा देकर के, गुरु सेवा में। गुरु सेवा में ने क्या, ये भगवान की कथाओं का प्रचार, गुरु जी का पैर दबा रहे थे ना, गुरु जी को खिला रहे हैं, किंतु गुरु जी के इसके लिए ऐसे कोमल शिशु बच्चे अभी। और इस प्रकार से दोपहर में धूप में खिलखिलाती हुई धूप और उसमें बिना खाए गुरु क्यों नहीं दया करेगा उन पर, अवश्य करता है। ऐसे ही कृपा को ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, कठोर परिश्रम भी चाहिए। एक समय में इनको कोई उतना नहीं जानते थे कि ये पढ़े लिखे और विद्वान आदमी और खूब मेधा युक्त है, कथा नहीं समझते थे लोग। किंतु सभी लोग जानते थे ये अलौकिक बालक, सभी बड़े डरते थे। परमानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य दोनों एक सम वयस्क, परमानंद प्रभु जी की उम्र इनसे 4-5 वर्ष बड़ी ही होगी, किंतु दोनों में लंगोटिया याद जैसा भाव, एक ही खाना पर सोना, कभी एक साल में भी खा लेना, ऐसे उनके आप प्रभुपाद जी की सेवा करते थे और तू कड़ाका परस्पर करते थे और प्रभुपाद जी इनको तुमी तुई दोनों को। और वो ऐसे थे रात में यदि कहीं किसी काम में गए हैं 12 बजे रात में लौटे, प्रभुपाद प्रभुपाद खोलो प्रभुपाद खोलो, धक्का दिए जोर कर दिए, आप सब लोग धक्का नहीं, ये क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी को उठा रहा है सो रहे हैं, और वो मानेगा नहीं, जोर जबरदस्ती कर करके अभी सो रहे हैं इसे कहते उठा करके, तब फिर जाकर के घर में सब ठीक ठाक कर करके प्रभुपाद का मसहरी लगाना और सब काम यदि ठीक है देख सुन करके तब फिर आराम। हम लोग तो कितना डरेंगे, किंतु उनकी सेवा के लिए आएगा। यदि किसी को पैसे की जरूरत है तो प्रभुपाद जी सहज ही पैसा नहीं देते थे किसी को, बड़ी मुश्किल से देते थे। जानते थे कि पैसा को रोजगार करना सहज है किंतु पैसे को परमात्मा में खर्च करना बड़ा कठिन है, पैसे को खर्च करके नरक में लुक जाए। एक ही पैसा कहां से कितना कष्ट करके लाया है, इसको कैसे परमात्मा ही केवल हम करेंगे, इसका कल्याण हो, इन्हें सहज ही नहीं देते, नहीं देते थे। और जरूरत है तो जाकर के परमानंद प्रभु से लोग कहते थे प्रभु प्रभुपाद तो दिवे ना आपने कुछ प्रभुपाद काटे थे के नियम आके दिए, तो कहते थे प्रभु 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 अरे पचाटा दिए देना फिर ये देना भले ये दे मैंने दे दीजिए था। तो अंत में जब प्रभुपाद जी देते ठीक है, नहीं दिया जब किसी कारण से तो बस झट पॉकेट में हाथ निकाल करके और पैसा ले लिया और लेकर के और उसको जाओ। ऐसे उनके मुंह लगे और बड़े प्रिय थे। तो प्रभुपाद जी का नियम था यदि किसी ब्रह्मचारियों में कोई मनोमालिन्य हो गया तो हर एकादशी को या कब कुछ मीटिंग कराते थे और उसमें सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को बुलाते थे और इनके गुण के संबंध में कुछ बोलिए, ऐसा करते थे। जैसे किसी दो लड़कों में लग गया, उन्होंने कहा तुम इनके संबंध में बोलो और उनको कहे तुम इनके संबंध में बोलो, तो उस समय तो भरी सभा है, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी और ब्रह्मचारी सब लोग हैं, उस समय अवगुण की तो बात कर ही नहीं सकते, केवल गुण की बात कर, तो उसने हमारे लिए इतना कह रहा है तो वो भी अब अच्छी तरह से उसके संबंध में बतलाया। तो दोनों में गुण वर्णन करने से ऐसा ही होता है। तो एक दिन किसी कारण से गुरु जी को कहा जैसे तुम परमानंद के संबंध में बोलो तो कुछ, तो गुरु गोविंद महाराज जी ने ये वैदांतिक पंडित थे, अभी कोई जानते नहीं थे, अब उसी दिन से प्रकाश हुआ, तो उन्होंने वो प्रणाम मंत्र कहा पहले परमानंद परमानंद माधव हो गया ना। अच्छा ये परमानंद माधव के दास है, इनका स्वरूप है। माधव को कैसे प्रसन्न किया जाता है, माधव के प्रतिनिधि हैं, उनको कैसे प्रसन्न करना किया जाता है ये जानते हैं, इसलिए ये परमानंद दास है। कैसे परमानंद दास हुए, अहो भक्तम महो भक्तम नंद गो प्रजोपाम जनमित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म
परमानंद
क्योंकि इसको श्लोक कर रहे हैं ना, जो जो ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं
आनंदमयो
अभ्यास परमानंदमयो अभ्यास, ऐसे सब दे करके उन्होंने 8 घंटे तक बहुत सुंदर रूप में सूक्ष्म रूप में वैदांतिक भाषा में उनका परिचय दिया। भोपाल थे और सब लोग बड़े आश्चर्य थे, कभी पढ़ता नहीं है लिखता नहीं है और इतनी कहां से ये सब ये किया, सब लोग आश्चर्य। तो प्रभुपाद ने इनके ये सब दे करके उनकी उपाधि दी कृति रत्न, कृतियों में भी रत्न है ये, उनका उपाधि दिया, बहुत ही सुंदर नाम दिया। तो विद्या क्या विनोद बिहारी कृति रत्न उनका नाम है। और वेदांत की जितनी भी पुस्तकें थी उन्होंने कहा ये सब तुम ले जाओ, ये तुम पढ़ना और तुम अपने पास में रखना, किसी को मत
देना।
तो ये सब पुस्तकें प्रभुपाद ने खुद उनको दे, और वेदांत वेदांत के ऊपर में इनको बीच बीच में कहते थे कुछ लिखने के लिए, तो उस समय पत्रिकाओं में छपता, उसी समय उन्हीं के प्रभुपाद जी के करुणा से स्फूर्ति से उन्होंने उसी समय में ये लिखा था मायावाद का जीवन विजय, वैष्णव विजय उसी समय में लिखा। उसको देख करके बड़े बड़े विद्वान लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा अनुपम ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसमें ये दिया है जितने असुर लोग थे वो अद्वैतवादी थे, इसलिए शंकर भी अब उसी से मिले हैं, ये बौद्ध जितने हैं असुर हैं। हिरण्यकश्यप को पहला नंबर का अद्वैतवादी, और उसी का वंशज हुआ रावण, ये प्रधान उस समय अपने समय में अद्वैतवादी लंका अवतार सूत्र उसने लिखा था अद्वैतवाद के सूत्र, और उसी को गौरपाद जी स्थापित किया अपनी उपनिषद है वो कौन सा है उसी की कारिका में, मांडुक के उपनिषद की कारिका। कारिका किसको कहते हैं, कारिका किसको कहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो कुछ भाव होते थे स्वरूप दामोदर अपने संस्कृत भाषा में श्लोकाकार में लिख देते थे, इसको कहते हैं कारिका ना? उसी प्रकार से मंडूक का जो उपनिषद है उसी की कारिका उन्होंने बनाई, किसने,
गौरपाद ने,
उसी को शंकराचार्य ने उसका उसके नहीं उसकी व्याख्या की, व्याख्या जैसे उनका क्या था क्या तात्पर्य है, और अपने गुरु जी को दिखलाया
गोविंदपाद
को। गुरु जी कहते हैं यदि मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता तो गौरपाद जी जो इनके परम गुरु थे उनकी मांडुक्य कारिका पर उन्होंने जो व्याख्या ली थी शंकर ने, उसको देख करके गोविंद पाद और गौरपाद दोनों ने आशीर्वाद दिया ये कैसे संभव हुआ, तो मुक्ति से मिल गए तो फिर आए कैसे,
मुक्ति
आए समझ में क्या, मुक्ति कहते हैं संपूर्ण रूप से ब्रह्म में मिल जाना निर्विधि, ब्रह्म हो गया, यदि वो ब्रह्म हो गए तो फिर उस कारिका की व्याख्या देखने के लिए गोविंदपाद और गौरपाद आए तो आए तो उनकी मुक्ति नहीं और शंकर की भी मुक्ति नहीं, और ये तीनों भी असुर श्रेणी में है क्योंकि रावण की परंपरा में है और वो क्या
बक्र
अस्ता बक्र इत्यादि की श्रेणी में ये लोग हैं, इसलिए गुरु जी ने उस पुस्तक में ये दिखलाए कि आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कोई वैष्णव अद्वैतवादी हुआ, किंतु जितने अद्वैतवादी थे वो परास्त होकर के पीछे से वैष्णव धर्म अधिकांश लोगों ने ग्रहण किया है, विशेष करके ब्रह्मवादी सनक सनंदन और सुखदेव गोस्वामी और भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब लोग कोई भी वैष्णव को शंकराचार्य ने हराया हो अपने दिग्विजय के समय ऐसा कहीं उल्लेख नहीं, किसको हराया, केवल कर्मियों को, ज्ञानियों को, बौद्धों को और सांख्य जो और कर्म मीमांसा इनको हराया, किसी वैष्णव के पास में नहीं गए, वृंदावन में आए थे और भागवत पर कुछ लिखना चाहा, ये भागवत से कुछ श्लोकों को लेकर के हम अद्वैत की सिद्धि करेंगे, जैसे वेदांत के सूत्रों का उल्टा अर्थ कर दिया, तत्त्वम असि तुम भी वही हो, किंतु इसका अर्थ है तत्त्वम असि तुम उनके सेवक हो, ये अर्थ है, तो उसका उल्टा अर्थ बना दिया। ऐसे ही सब अर्थों का कदर्थ किया है, किंतु भागवत पर जब यहाँ पर वृंदावन में आए तो उनको कहीं से सुनाई पड़ा, वृंदावन में अधिक दिन मत रहो, भागवत पर कलम मत उठाना, भागवत भगवान का कृष्ण का ये शरीर है, इसकी अंग है, वेदांत को लिया वो ठीक है, उपनिषदों को लेकर के उसका कदर, किंतु भागवत के ऊपर में कभी भी हस्तक्षेप मत कर, इसलिए उस पर उन्होंने कलम नहीं उठाई, बल्कि गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मति, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह से गुरु महाराज जी उस ग्रंथ में ऐसा ही उन्होंने किया, और अचिंत भेदावेद ग्रंथ में अद्वैत, अभी जो अद्वैत ज्ञान तत्व को बतलाया ना, इस प्रकार से खंडन किया, नहीं तो तुम लोगों की बुद्धि भी यदि वो पढ़ेगा सुंदरानंद का पुस्तक में सचमुच में मालूम होगा, हम भी पहले जब पढ़े तो ऐसे मालूम हुआ, किंतु गुरु महाराज जी का जबकि ये एक्सप्लेनेशन जब सुना तो मन कर ही नहीं ऐसे।